एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी मेजबान।
और मैं हूं आपका साथी मेजबान। ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है।
आज हम बात कर रहे हैं पीटर मैथिसन की एक बहुत ही खास किताब द स्नो लेपर्ड पर।
हाँ, और ये सिर्फ एक पहाड़ों की यात्रा की कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
ये बाहरी दुनिया की खोज और इंसान के अंदरूनी सफर का एक ऐसा संगम है जो आज भी, मतलब इतने सालों बाद भी, उतना ही जरूरी लगता है।
सही का, क्योंकि ये उन सवालों से जूझती है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना? जैसे कि दुख का सामना कैसे करें, ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है इसमें सुकून कहाँ मिलेगा,
हाँ,
और कैसे हमारी बाहरी यात्राएं असल में हमारे अंदर का आईना बन जाती हैं।
और ये भी कि क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता, मतलब तर्क और एहसास, क्या ये साथ साथ चल सकते हैं?
हाँ, ये वो सवाल हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं।
तो चलिए पहले इस कमाल की किताब के लेखक पीटर मैथिसन को थोड़ा जानते हैं। ये कोई आम लेखक नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। पीटर मैथिसन 1927-2014, वो अमेरिका के उन गिने चुने लेखकों में से थे जो एक तरफ तो बेहतरीन नॉवेल लिखते थे और दूसरी तरफ दुनिया के माने हुए नेचर राइटर भी थे।
अच्छा।
हाँ, सोचिए, उन्होंने मशहूर लिटरेरी मैगजीन द पैरिस रिव्यू की को फाउंडिंग की, और वो अकेले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों के लिए नेशनल बुक अवार्ड जीता है।
अरे वाह, ये तो सच में असाधारण है।
और उनकी यात्राएं, वो करीब करीब हर महाद्वीप पर गए, खासकर उन जगहों पर जहाँ की संस्कृतियां, वहां के वन्यजीव खतरे में थे।
जैसे कि उनकी वो किताबें अफ्रीका पर और न्यू गिनी पर।
हाँ, जैसे द ट्री वेयर मैन वॉज बॉर्न पूर्वी अफ्रीका पर, या अंडर द माउंटेन वॉल न्यू गिनी के बारे में। ये किताबें उनकी गहरी समझ दिखाती हैं।
तो ऐसा क्या था मैथिसन में कि वो द स्नो लेपर्ड जैसी किताब लिख पाए? मतलब सिर्फ घूमना ही तो काफी नहीं होता ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ना तीन चीजें आकर मिलती हैं जो उन्हें खास बनाती हैं।
अच्छा, क्या है वो?
पहली चीज, एक प्रकृतिवादी मतलब नेचुरलिस्ट के तौर पर उनकी पक्की ट्रेनिंग। वो हिमालय के माहौल का, वहां के पेड़ पौधों, जानवरों का बहुत बारीकी से सटीक वर्णन कर सकते थे।
वैज्ञानिक नजर।
हाँ, दूसरी चीज, एक नॉवलिस्ट की नजर और भाषा। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते बल्कि उन अनुभवों को एक तरह की कविता में, एक गहरे पर्सनल एहसास में बदल देते हैं।
और तीसरा पहलू जो शायद सबसे अहम है,
वो है उनका ज़ेन बौद्ध धर्म का गहरा और लंबा अभ्यास। जब वो 1973 में से यात्रा पर निकले थे, वो एक सीरियस ज़ेन प्रैक्टिशनर थे।
अच्छा।
और एक और बहुत जरूरी बात, ये यात्रा उनकी पत्नी डेबोरा लव की कैंसर से मृत्यु के बस कुछ महीने बाद ही शुरू हुई थी।
तो इसका असर जरूर किताब पर पड़ा होगा।
बहुत ज्यादा। इसी वजह से किताब में कच्चापन है, एक भावनात्मक सच्चाई है। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर या नेचुरलिस्ट की तरह नहीं गए थे, वो एक दुखी इंसान थे जो सुकून और समझ ढूंढ रहे थे।
तो ये यात्रा उनके लिए एक तरह से हीलिंग का जरिया भी थी।
हाँ, दुख से गुजरने का और अपनी ज़ेन साधना को जीने का एक तरीका।
तो अब आते हैं किताब पर, ये है किस बारे में? मतलब ऊपर ऊपर से देखें तो।
ऊपर से देखें तो ये 1973 के पतझड़ में पीटर मैथिसन की नेपाल के एक बहुत दूर दराज ऊंचे इलाके डोल्पो में की गई यात्रा का रिकॉर्ड है।
डोल्पो, ये तिब्बती पठार का हिस्सा है ना?
हाँ, बिल्कुल, एक तरह का छिपा हुआ बौद्ध साम्राज्य। ये यात्रा करीब 2 महीने चली और लगभग 250 मील की पैदल यात्रा थी।
अकेले गए थे वो?
नहीं, उनके साथ थे जाने माने जीव विज्ञानी जॉर्ज शैला।
अच्छा, शैला।
हाँ, शैला का मेन काम था हिमालय की नीली भेड़, जिसे भरल कहते हैं, उसको स्टडी करना।
और स्नो लेपर्ड, किताब का नाम उसी पर है।
हाँ, वो दूसरा और ज्यादा रोमांचक लक्ष्य था भरल का शिकार करने वाले, उस रहस्यमयी मुश्किल से दिखने वाले हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड की एक झलक पाना। किताब में यात्रा की मुश्किलों का जिक्र तो है ही, 17,000 फीट से ऊंचे दर्रे चढ़ना, जमा देने वाली ठंड, खाने की कमी।
और वो जंगली बीहड़ इलाका, रास्ता ढूंढना भी आसान नहीं रहा होगा।
बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एडवेंचर की कहानी नहीं है।
हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है।
निश्चित रूप से, बहुत जल्द ये किताब एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा, एक स्पिरिचुअल मेमोयर बन जाती है। ये जिंदगी, मौत और सच्चाई की प्रकृति पर एक गहरा चिंतन है।
और पहाड़ों का सफर,
वो बाहरी सफर मैथिसन के मन की अंदरूनी यात्रा का एक सटीक प्रतीक, एक मेटाफर बन जाता है।
अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख से जूझते हुए।
हाँ, वो इस पद यात्रा को एक चलते फिरते ध्यान, एक वॉकिंग मेडिटेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर कदम के साथ वर्तमान में रहना, ये उनके लिए अपने दुख, अपनी ईगो, अपनी इच्छाओं का सामना करने का एक तरीका बन जाता है।
और कहानी का फॉर्मेट कैसा है?
एक डायरी की तरह, डेट वाइज एंट्रीज हैं। इनमें सिर्फ दिन में क्या हुआ, मौसम कैसा था, कौन से जानवर दिखे, यही नहीं है,
बल्कि उनकी अपनी यादें, सपने, चिंताएं,
हाँ, और उनके फिलोसॉफिकल विचार भी। तो पढ़ने वाला एक साथ दो यात्राएं कर रहा होता है, एक हिमालय के कमाल के पर खतरनाक नजारों के बीच,
और दूसरी इंसान के मन के उतने ही विशाल और चुनौतीपूर्ण दुनिया के अंदर।
और इस किताब की एक बहुत खास बात है, मैथिसन का जो आध्यात्मिक इंट्यूटिव नजरिया है, और जॉर्ज शैलर, जिन्हें वो GS कहते हैं, का जो वैज्ञानिक तर्क वाला नजरिया है, उनके बीच का बैलेंस।
शैलर मतलब फैक्ट्स, डेटा, जो दिख रहा है बस वो।
बिल्कुल। और मैथिसन जो खुद भी अच्छे नेचुरलिस्ट हैं, वो लगातार गहरे रहस्यमय अर्थ ढूंढ रहे हैं। वो पहाड़ों को पवित्र मानते हैं, जानवरों को मैसेंजर।
तो ये जानने के दो अलग अलग तरीकों की बात है, तर्क और अंतर्ज्ञान।
हाँ, और किताब ये दिखाती है कि शायद पूरी समझ के लिए दोनों जरूरी हैं। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।
चलिए अब इस यात्रा के जो अलग अलग पड़ाव हैं, उनमें थोड़ा और गहराई से चलते हैं। आपने बताया कि किताब में डेट्स के हिसाब से एंट्री हैं, पर हम इसे समझने के लिए चार हिस्सों में देख सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ रास्ते के हिस्से नहीं है, बल्कि मैथिसन के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उनके भी चरण हैं।
तो पहला चरण,
पहला है पहुंच, शुरुआत और काली गंडकी, सितंबर 28, अक्टूबर 16। यात्रा काठमांडू में तैयारी से शुरू होती है। मैथिसन शुरू में ही साफ कर देते हैं कि यात्रा के दो मकसद हैं, शैलर का साइंटिफिक मिशन और उनकी अपनी छोटी निजी तीर्थ यात्रा।
यही वो अपनी जेन प्रैक्टिस और पत्नी की मृत्यु के दुख का जिक्र करते हैं।
हाँ, फिर पोखरा से उड़ान भरते हैं और असली पदयात्रा शुरू होती है। ये शुरुआती हिस्सा तलहटी से और काली गंडकी नदी की घाटी से गुजरता है, जो दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक है।
यहाँ नज़ारे काफी हरे भरे होंगे।
हाँ, हरे भरे विविध नज़ारे हैं, और नेपाल के अलग अलग समुदायों से मिलना होता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, हिंदू कल्चर से बौद्ध कल्चर में बदलाव दिखता है।
और यही मैथिसन अपने मन की तुलना शैलर के स्वभाव से करते हैं।
हाँ, वो अपने बेचैन मन को देखते हैं और शैलर के प्रैक्टिकल फोकस स्वभाव को भी, और यही वो वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करते हैं। हर कदम, हर सांस पर ध्यान देना, ये आगे की मुश्किल यात्रा के लिए एक तरह की मानसिक तैयारी है।
इसके बाद आता है भाग दो, चढ़ाई ऊंचे दर्रे और डोलपो की ओर, अक्टूबर 17, अक्टूबर 30। यहाँ से माहौल बदल जाता होगा।
हाँ, यहाँ से यात्रा की इंटेंसिटी और मूड दोनों बदल जाते हैं। टीम नदी घाटियों को छोड़कर डोलपो के गेटवे कहे जाने वाले ऊंचे दर्रों की मुश्किल चढ़ाई शुरू करती है।
शारीरिक मुश्किलें बढ़ जाती होंगी।
बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड सिकनेस, जमा देने वाली ठंड, खतरनाक रास्ते, नज़ारे भी हरे जंगलों से बदलकर चट्टान, बर्फ और खुले आसमान वाली कठोर अल्पाइन दुनिया बन जाते हैं।
और मैथिसन की अंदरूनी यात्रा
वो भी साथ साथ गहरी होती जाती है। शारीरिक तकलीफ एक तरह से प्योरिफिकेशन का काम करती है, फालतू विचारों को हटाकर उन्हें एक हाइटेंड अवेयरनेस, एक बढ़ी हुई जागरूकता की स्थिति में लाती है।
मठों का जिक्र भी आता है।
हाँ, वो दूर दराज के मठों गोम्पा में जाते हैं, लामाओं से मिलते हैं। उन्हें शे में क्रिस्टल मठ के बारे में पता चलता है, जो उनकी स्पिरिचुअल खोज का एक सिंबॉलिक डेस्टिनेशन बन जाता है।
और वर्तमान क्षण में जीना,
वो अब सिर्फ एक फलसफा नहीं रहता, बल्कि जिंदा रहने की जरूरत बन जाता है। उन्हें अनित्यता, मतलब हर चीज के बदलते रहने का जो बौद्ध सिद्धांत है, वो पहाड़ों की भव्यता और मौसम की कठोरता में साफ दिखता है। इससे उन्हें अपनी पत्नी के दुख को पकड़कर रखने की निरर्थकता का भी एहसास होता है।
तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है खोज का हृदय, शे गोम्पा और तलाश, अक्टूबर 31, नवंबर 28। आखिरी दर्रा पार करके टीम शे पहुंचती है।
हाँ, क्रिस्टल माउंटेन और शे का मठ, ये डोलपो मोन के सफर का दिल है। यहीं साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों खोजें मिलती हैं।
शले तो अपने काम में लग जाते होंगे, भरल स्टडी करने।
फौरन वो अपने रिसर्च में डूब जाते हैं, भरल के व्यवहार का बारीकी से अध्ययन करते हैं। मैथिसन भी उनके साथ होते हैं, और उनके जो वाइल्ड लाइफ के वर्णन हैं,
उनमें वो दोनों बातें हैं, एक वैज्ञानिक की सटीकता और एक कवि का विस्मय।
बिल्कुल, भरल की सुंदरता, उड़ते हुए लैमरगेयर गिद्ध, कभी कभार दिखने वाले तिब्बती भेड़िए, और यहीं पर हिम तेंदुए की मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है।
दिखता नहीं है पर महसूस होता है।
हाँ, वो खुद तो अदृश्य रहता है, लेकिन बल्फ पर उसके ताज़ा निशान, उसकी गंध से चिन्हित इलाका, उसके शिकार के बचे खुचे हिस्से, ये सब बताते हैं कि वो यहीं कहीं हैं। तेंदुआ जैसे एक भूत है, एक ताकतवर गैर मौजूदगी जो उस पूरे लैंडस्केप को डिफाइन करती है।
और इस दौरान मैथिसन के अंदर क्या चल रहा है?
ये इंतजार का वक्त,
शेर में ये इंतजार और देखने का लंबा दौर मैथिसन के लिए एक बहुत गहरी ध्यान साधना बन जाता है। उस ऊंचे पठा की असीम शांति में वो अपने ईगो, अपनी इच्छाओं और अपने दुख की गहराइयों का सामना करते हैं।
उन्हें कुछ खास अनुभव भी होते हैं।
हाँ, कई बार बहुत शक्तिशाली, लगभग विजनरी जैसे अनुभव होते हैं।
उनकी जेन प्रैक्टिस उन्हें क्लैरिटी और अपने आसपास के माहौल के साथ गहरी एकता के पलों तक ले जाती है। यहीं पर अनात्मा यानी मैं या परमानेंट सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं है का विचार उनके लिए ज्यादा रियल होने लगता है।
और तेंदुए को न देख पाने की असफलता
वो धीरे धीरे एक सबक में बदलने लगती है। तेंदुआ शायद उस होने की अवस्था, उस प्योर बीइंग का प्रतीक है जिसे पकड़ा या जीता नहीं जा सकता, जिसका सामना सिर्फ धैर्य और विनम्रता से ही हो सकता है।
और फिर आता है आखिरी चरण, भाग चार, वापसी, ढलान और समन्वय, नवंबर 29 दिसंबर 1।
हाँ, सर्दियां बढ़ रही हैं, खाना कम हो रहा है और अब शे छोड़कर वापसी का सफर शुरू करने का टाइम है।
और क्लाइमैक्स थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स है।
हाँ, जिस दिन मैथिसन उस इलाके में अपना आखिरी ध्यान कर रहे होते हैं, शैलर अकेले घूमकर लौटते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी दूर पहाड़ी पर एक हिम तेंदुआ देखा है।
और मैथिसन उसे देखने से चूक जाते हैं।
हाँ, वो अपनी साधना में इतने गहरे डूबे थे कि चूक जाते हैं।
उन्हें निराशा नहीं होती।
यही तो बात है, निराशा के बजाय उन्हें गहरी स्वीकृति, एक डीप एक्सेप्टेंस और यहां तक कि एक तरह की खुशी महसूस होती है। ये जानना ही काफी है कि तेंदुआ है, कि वो वहां था। देखना या ना देखना उतना जरूरी नहीं रहा। वापसी की यात्रा तेज है, दुनिया की तरफ वापस उतरना, लेकिन मैथिसन अब बदल चुके हैं। ये आखिरी हिस्सा एक तरह से इंटीग्रेशन और रिफ्लेक्शन का है।
मतलब उन्होंने ना तो पहाड़ जीता, ना तेंदुए को पाया।
हाँ, उस तरह से नहीं जैसा शायद शुरू में सोचा होगा, बल्कि उन्होंने स्वीकृति, खोज के असली मतलब और देखने वाले और दिखने वाली चीज के बीच के अलगाव के भ्रम के बारे में गहरा सबक सीखा है। यात्रा किसी बाहरी जीत के साथ नहीं, बल्कि एक शांत भीतरी समाधान के साथ पूरी होती है।
तो इस पूरी यात्रा और किताब से कुछ मुख्य विषय संदेश क्या उभर कर आते हैं? एक तो साफ है, अंदरूनी और बाहरी यात्रा का साथ साथ चलना।
हाँ बिल्कुल, हिमालय की फिजिकल यात्रा मैथिसन के मन और आत्मा की यात्रा का सीधा आईना है। बाहरी चुनौतियां उनके अंदरूनी संघर्षों, दुख, ईगो, मोह को रिफ्लेक्ट करती हैं।
दूसरा अहम थीम है विज्ञान और रहस्यवाद का संतुलन।
हाँ, शेलर का तर्क और मैथिसन का अंतर्ज्ञान, ये टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये दिखाता है कि दुनिया को समझने के दोनों तरीके वैलिड हैं और शायद पूरी सच्चाई के लिए दोनों की जरूरत है।
तीसरा जो बहुत छूने वाला विषय है वो है शोक, स्मृति और जाने देने की कला।
हाँ, किताब का इमोशनल कोर मैथिसन का अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख है। ये यात्रा उस दुख को प्रोसेस करने का एक कॉन्शियस एफर्ट है। धीरे धीरे दर्द एक शांत स्वीकृति में बदल जाता है। हिमालय का विशाल उदासीन लैंडस्केप उन्हें अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट सिखाता है।
चौथा है वर्तमान क्षण की मायावी प्रकृति। हिम तेंदुआ उसका प्रतीक बन जाता है।
हाँ, उस शुद्ध प्रेजेंट मोमेंट का सिंबल वो बस है, बिना अतीत या भविष्य के बोझ के। उसे पकड़ा या फोर्स नहीं किया जा सकता। उसका अनुभव तभी होता है जब मन शांत हो, पूरी तरह वर्तमान में हो, जैसे मैथिसन ध्यान की गहरी अवस्थाओं में महसूस करते हैं।
चलना ही ध्यान बन जाता है।
और पांचवां, ज़ेन बौद्ध धर्म सिर्फ फलसफा नहीं, जीने का तरीका है।
बिल्कुल, ये किताब ज़ेन प्रिंसिपल्स का लाइव एक्सपीरियंस कराती है। अनित्यता, सब कुछ बदल रहा है, दुख, जीवन में कष्ट है, अनात्म, स्थाई मैं नहीं है, ये बातें सिर्फ कहीं नहीं गई बल्कि यात्रा की मुश्किलों में, पहाड़ों के बदलते रूपों में, मैथिसन के अपने ईगो के पिघलने में महसूस की जाती हैं। चलना ही ध्यान बन जाता है। एक और बात आपने कही थी, प्रकृति की पवित्रता।
हाँ, मैथिसन हिमालय को सिर्फ खूबसूरत या खतरनाक जगह नहीं मानते, बल्कि एक पवित्र स्थान, एक सेक्रेट स्पेस मानते हैं। वो वहां के लोकल तिब्बती लोगों की मान्यताओं का सम्मान करते हैं, जहां पहाड़ों में देवता, नदियों में आत्माएं, जानवरों में संदेशवाहक देखे जाते हैं। ये नेचर के अपने इंट्रिंसिक वैल्यू की बात है।
और आखिर में खोज का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ सीकिंग।
हाँ, अक्सर मंजिल से ज्यादा जरूरी सफर हो जाता है। हिम तेंदुए को देखने का लक्ष्य कहानी को चलाता है, लेकिन मैथिसन के लिए उसे न देख पाना ही सबसे बड़ी सीख बन जाती है।
मतलब कोशिश करना, ध्यान देना और यात्रा में जो बदलाव आता है वही असली इनाम है।
हाँ, मंजिल तो बस एक बहाना हो सकती है।
किताब में ऐसी कई पंक्तियां और विचार हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं। कुछ यादगार विचारों पर बात करते हैं।
हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। पहाड़ का रहस्य ये है कि पहाड़ बस मौजूद हैं जैसे मैं हूं। पहाड़ बस मौजूद हैं जो मैं नहीं हूं। पहाड़ों का कोई अर्थ नहीं है, वही अर्थ हैं, पहाड़ हैं।
ये ज़ेन वाली समझ है ना? चीजें बस हैं जैसी हैं।
हाँ, बिना हमारे दिए हुए मतलब के पहाड़ अपने आप में पूरे हैं। उनका होना ही उनका मतलब है। ये होने की अवस्था, बीइंगनेस है, जिसकी मैथ्सेंसन तलाश कर रहे हैं।
और वो वाला डायलॉग भी बड़ा मजेदार है। क्या आपने हिम तेंदुआ देखा? नहीं। क्या ये अद्भुत नहीं है?
हाँ, ये किताब की पैराडॉक्सिकल जीत को दिखाता है। आम सोच में तो लक्ष्य ना पाना फेलियर है,
लेकिन ज़ेन नजरिए से ये असफलता एक गिफ्ट है।
बिल्कुल। ये तेंदुए को रहस्यमयी बनाए रखता है, उसे पकड़ने की इच्छा से आजाद रखता है। मजा पाने में नहीं, खोजने की प्रक्रिया में है।
तीसरा विचार स्वीकृति पर है। सभी जीवन की करुणामय स्वीकृति में एक उदात्त विवेक, एक शांत मन और एक मौन हृदय है।
ये मैथिसन की यात्रा के अंत का सार है। शांति चीजों को बदलने की कोशिश से नहीं, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार करने से मिलती है। नुकसान को, दुनिया की सच्चाई को और खुद को।
और उनकी पत्नी डेबोरा की याद, जिसके बारे में वो सोचते हैं कि वो जीवन भर ज़ेन बौद्ध रहीं, बिना ये जाने हुए भी।
हाँ, ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता को पढ़ना और उसे सहज रूप से जीना, ये अलग चीजें हो सकती हैं। डेबोरा एक तरह की नेचुरल स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है।
और ध्यान के उद्देश्य पर मैथिसन का विचार।
वो कहते हैं, ध्यान अभ्यास का उद्देश्य ज्ञानोदय नहीं है। ये असाधारण क्षणों में भी ध्यान देना है, वर्तमान का होना है, वर्तमान के सिवा कुछ नहीं। अब की इस सजगता को साधारण जीवन की हर घटना में लाना है।
मतलब ध्यान का लक्ष्य कोई स्पेशल एक्सपीरियंस पाना नहीं,
नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना सीखना है।
ये तो बहुत गहरे विचार हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें हम अपनी आम जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? क्या इसके लिए हिमालय जाना जरूरी है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली सीख तो ये है कि नतीजे से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दें। हम अक्सर अपने गोल्स में इतने खो जाते हैं, प्रमोशन चाहिए, एग्जाम पास करना है, प्रोजेक्ट पूरा करना है, कि हम उस रास्ते का मजा लेना या उससे सीखना भूल जाते हैं। मैथिसन की यात्रा सिखाती है कि सफर की क्वालिटी, मतलब कैसे, पर ध्यान देना जिंदगी को ज्यादा संतोषजनक बना सकता है। उनकी सबसे बड़ी असफलता ही उनकी सबसे बड़ी सीख बनी।
दूसरी बात, रोजमर्रा की जिंदगी में सचेतनता यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास।
हाँ, इसके लिए पहाड़ों की जरूरत नहीं, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। सुबह की बदलती हुई रोशनी, ट्रैफिक का शोर, चाय का स्वाद, ये सब हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाने में मदद कर सकता है। ये बस ध्यान देने की प्रैक्टिस है, कहीं भी, कभी भी।
तीसरा, दुख और हानि से गुजरना। मैथिसन का तरीका एक रास्ता दिखाता है।
हाँ, दर्द से भागने के बजाय उसे स्वीकार करके उसके साथ चलकर भी गुजरा जा सकता है। उन्होंने फिजिकल चैलेंज और नेचर के एकांत को हीलिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया। ये हमें सिखाता है कि दुख को महसूस करने देना, शायद किसी क्रिएटिव काम से, फिजिकल एक्टिविटी से या नेचर में टाइम बिताकर, पैसिवली सहने से ज्यादा मददगार हो सकता है।
और चौथा, तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों को महत्व देना।
बिल्कुल, शेलर तर्क और मैथिसन अंतर्ज्ञान की जोड़ी याद दिलाती है कि हमारे अंदर ये दोनों क्षमताएं हैं। किसी फैसले पर पहुंचने के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना जरूरी है, पर अपनी अंदर की आवाज या गट फीलिंग को सुनना भी उतना ही जरूरी हो सकता है। बेस्ट समझ शायद दोनों को मिलाकर ही बनती है।
और आखिर में, एकांत और डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाने का महत्व।
हाँ, मैथिसन को क्लैरिटी पहाड़ों की शांति और अकेलेपन में मिली। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी दुनिया के शोर शराबे, स्क्रीन और लगातार इन्फॉर्मेशन के फ्लो से हटकर कुछ टाइम अकेले बताना जरूरी है, ताकि हम गहरा सोच सकें, खुद को बेहतर समझ सकें और अपनी अंदरूनी आवाज सुन सकें।
तो अंत में, इस किताब और हमारी चर्चा से मुख्य बातें क्या रही? मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्ची शांति वो पाने से नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, बल्कि जो है उसे पूरी तरह से अपनाने से मिलती है, चाहे उसमें कमियां हों, दुख हो या ऐसे अदृश्य तेंदुए हों जो हमें कभी न दिखें।
और मेरे लिए नेचर की जबरदस्त पावर जो हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। हमें शायद हिमालय जाने की जरूरत ना हो, पर अपने आसपास की प्रकृति से जुड़ना भी हमें गहरे सच दिखा सकता है। ये किताब दिखाती है कि सबसे बड़ी यात्राएं अक्सर अंदर की ओर होती हैं।
हाँ।
और बाहरी दुनिया, खासकर प्रकृति, उस अंदरूनी खोट का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन सकती है।
ये किताब वाकई हमें लक्ष्य पाने और चीजें जमा करने वाली जिंदगी से हटकर जागरूकता और हर पल की सराहना करने वाले जीवन की ओर देखने का नजरिया देती है।
और ये विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता को इतनी खूबसूरती से मिलाती है कि गहरे से गहरे आध्यात्मिक विचार भी ठोस और जीवंत लगते हैं। ये सिर्फ एक दुर्लभ जानवर को खोजने की कहानी नहीं, बल्कि इस विशाल जुड़े हुए ब्रह्मांड में अपनी जगह खोजने की कहानी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।